سفیان بن عیینہ کا قول ہے، اللہ کی قسم تم اس وقت تک محبت کی گہرائی تک رسائی پا نہیں سکتے جب تک کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی محبت کے سامنے تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہو جائیں، اور دنیا میں سے کسی چیز کی محبت تمہارے دل میں شائبہ تک نہ پایا جائے، اس کا دنیا میں سے کسی چیز کی محبت کا شائبہ بھی نہ پایا جائے دل میں. اور جس شخص نے قرآن کریم سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا، خود سے لکھے اپنا نام، کیا میں ہوں وہ جس نے قرآن کریم سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا، گویا کہ اس کی محبت اللہ سے پکی ہو گئی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ سے پکی محبت کی دلیل قرآن سے محبت. یہ نہیں ہو سکتا قرآن چل رہا ہو اور ہم کچھ اور کر رہے ہوں، ہمارا دل دماغ کہیں اور ہو، ہم سوچوں میں ہو، ہم سارے اسکیڈول اپنے سیدھے سادھے کر لیں گے کسی قیمت پہ کرنے پڑے، لیکن ہم اس کتاب کو نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ دیکھیے ایک اور علامت ہے دسویں نمبر کی، نیک اعمال میں سستی پر حسرت اور ندامت کا اظہار بھی محبت ہے. سبحان اللہ، یعنی کیا سستی جب آتی ہے میرے اندر اور کوئی نیک عمل مجھ سے چھٹ جاتا ہے تو کیا میں اس وقت دکھ محسوس کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کے نزدیک وقت کا ضائع کرنا، اس کو بند لکھیے ذرا، اور خود سے بھی پوچھیے ٹائم ویسٹرز کیا ہے میرے. یعنی جب ایک انسان اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے تو اس کو اس سے کیسا لگتا ہے؟ یعنی بغیر عمل یا بغیر اطاعت اور فرما برداری کے وقت ضائع کر دینا پہاڑ ڈھا دینے سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک ہوا کرتا ہے. اگر اللہ والوں میں سے کسی بندے کا کوئی وظیفہ یا ورت کسی دن فوت ہو جاتا تو وہ اس کا علم اور دکھ درد مال و دولت کے ضائع ہونے سے زیادہ محسوس کرتے، اور اللہ والوں کو مال کے چوری ہو جانے یا ضائع ہو جانے سے زیادہ اپنے ذکر اذکار سے محرومی کھلتی ہے، بلکہ وہ اس کی ٹیس کو اپنے دل میں واضح طور پر محسوس کرتے ہیں اور مارے شرم اور ندامت کے فوراً اس کی خانہ پوری کی کوشش کرتا اور جلد از جلد اس کی ادائیگی کا بندوبست کر کے اس سے دست بردار ہو جانا، یعنی اس سے ہاتھ اٹھا لینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی عمل بطور ورد شروع کرتے تو اس کو پابندی کے ساتھ مستقل مزاجی سے کرتے، اور کبھی رات کو نیند کا شکار ہو جاتے یا بیماری سے دوچار ہو جاتے تو آپ کی طبیعت ناساز ہوتی تو دن کو 12 رکعتیں ادا کر کے اس کی تلافی کر لیا کرتے، یعنی کبھی تہجد چھٹ جاتی تو دن میں پڑھتے. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو تہجد کا عادی ہے، حالانکہ تہجد نفل ہے نہ پڑھے، لیکن وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے پھر دن میں اٹھ کے پڑھ لے، اللہ اس کو اس کا اجر دے دے گا. ہم پوچھیں اپنے آپ سے کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور کتنا ہم سستیوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہر ایک کو اپنا پتہ، کوئی اس پہ سوچ سکتا ہے اپنا کوئی عمل؟ ایک لمحے کی سستی بندے کو راستے سے ہٹا دیتی ہے. بس ایک غفلت کا وقت آتا ہے زندگی میں، پتہ نہیں ہم کیا غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور یہ کتاب ہمارے ہاتھوں سے دور چلی جاتی ہے. یہ دیکھیے اکثر میں یہ انگلیوں کا فاصلہ دکھاتی ہوں آپ کو، یہ دو انگلیاں نا ابھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ دیکھیے نیچے سے فاصلہ کہاں سے شروع ہوا؟ تھوڑا، دن بہ دن کہاں ہو رہا ہے؟ یہ نیچے سے آپ پہلے ایک تھے، آپ اتنے ہوئے، قرآن سے بس اتنا کو آپ دور ہوتے ہیں. آپ کہتے نہیں بس پانچ نہیں، اب چار ہی دن بہت ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ اگلے اسٹیپ پہ چار سے تین رہ جائیں گے، تین سے پھر دو، پھر دو سے ایک، اور ایک سے کچھ بھی نہیں. پھر کہتے ہیں نہیں آلٹرنیٹ ویکس، پھر کہتے ہیں ونس اے منتھ، پھر آپ کہتے ہیں ونس اے ایئر، پھر آپ کہتے ہیں ونس اے وائل، رمضان میں ہی ایک بار، اور یہ کرتے کرتے ہی، اور یہ پہاڑ جتنا دور کریں گے پٹتا ہی جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا اس قرآن کو زور سے پکڑیں تو آپ اس میں جو چھٹی کے بھی دن ہیں اس کو بھی کینسل کر دیں، کہاں آتے ہوئے دن چھوڑ دیں. اور میں بدگمانی نہیں کرتی، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ اگر آپ ہفتے میں پانچ دن آتے تھے نا تو آپ زیادہ کام کے تھے، آپ نے صرف ایک جمعہ کم کیا تھا. آپ میں سے جن کو میں کہہ رہی ہوں ان کو پتہ ہے اس سے کتنی کارکردگی آپ کی کم ہو گئی ہے. وہ ایک جمعہ ہی تو آپ کو پکڑتا تھا اور اب کوئی چھٹی نہیں ہے جمعے کو. میں یہ تو آپ کو اپنی طرف سے اعلان کریں نہ کریں، आपको कल के जुम्मे से लेके जब तक आगे कम से कम मैं आपके साथ हूं, मैं तो आपको एक दिन की छुट्टी नहीं दूंगी। आप ना आए तो ना आए, मैं आके बैठूंगी इधर। कोई छुट्टी नहीं है स्कूल में जुम्मे को। जिसको करनी है वो कर ले, वो वैसे भी कर लेते हैं दिनों में भी। अपने वक्त पे आइए, अपनी मर्जी से आइए, अपनी मर्जी से जाइए, आपको कौन पूछ सकता है? आपको इसकी अभी वैल्यू नहीं पता, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम पढ़ाएंगे। और फिर आप देखिए कि जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो फिर इंसान को अपने बाकी काम भी अच्छे लगते हैं। अगली अलामत भी नोट कर लीजिए, और वो क्या है कि मुहिब अपने महबूब की अजमतों की कबरियाई के सामने अपने अमाल को हेज समझता है। यानी इसको आसान लफ्जों में बोलूं, हुब्बे इलाही का नतीजा क्या है कि अपने बड़े बड़े अमल भी अल्लाह की शान के काबिल नहीं दिखते। आप किसी को भी गिफ्ट देते हैं ना, आम बंदे को देना, तो आप थोड़ी सी कोशिश से खरीद रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है अच्छा लगेगा, ले लेते हैं, आ जाएगा उसको पसंद। लेकिन आप किसी बहुत बड़े और बड़े आला जौक के इंसान और बड़े जिसके लिए आपके दिल में मोहब्बत और अजमत, उसके लिए कुछ लें, तो आखिरी वक्त तक क्या कर रहे होते हैं हम लोग? लगता है ठीक नहीं, पता नहीं उनके काबिल नहीं है, बस इसको आप कई गुना ज्यादा कर लें। जो नमाज मैंने सुबह फजर पे पढ़ी, क्या वो इस काबिल थी कि अल्लाह को पेश करूं? क्या वो नमाज अल्लाह के सामने जाएगी और खुलेगी, और फरिश्ते वो गिफ्ट पेपर खोलेंगे जिसमें लिपट कर फजर आई, तो वो क्या कहेंगे, अल्लाह ये किसने भेजा है, ये कैसी तेरी बंदी है, ये नमाज पढ़ के भेजी है उसने? ये कैफियत आपको अपने हर अमल पे महसूस हो। कोई नाज तो करे ही ना, बहुत पढ़ चुके हैं, अब छुट्टी चाहिए। कितना पढ़ा, क्या पढ़ लिया, क्या तीर मार लिया हमने। बड़े बड़े अहमे कराम की जिंदगी देखें, क्या क्या वो पहाड़ ढा गए इल्म के, कच्चा पक्का इल्म लेके क्या लिया हमने। मैं कहती हूँ आप एक कोर्स करें, बस एक, जिसमें आप दावा कर सकें कि 9 से पहले और 2:30 से बाद तक इधर थी, और बीच में सिर्फ तब उठी जब सब उठे। बस एक कोर्स आप इसके बाद करें, सब जो 4 दफा भी कुरान पढ़ चुके हैं, एक कोर्स ऐसा करें या कराएं, वो कराने वाले तो खुद ही कर लेंगे साथ, फिर देखिए वो आपके दिल की दुनिया कैसी बदलता है। लोग तड़पते आके कहते कुछ करें कि हम बदल जाएं, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन हम इस कुरान क्लास में होते हैं तो हम कुछ और होते हैं, बाहर जाते हमारा दिल क्यों बदल जाता है? और ये सारी चीजें देखें, क्या मुझे सुस्ती है, सुस्ती पे हसरत है? मैं अक्सर लोगों में हसरत नहीं देखती, नदामत नहीं देखती, वो कहते शुक्र है मजबूर हुए, अल्लाह का शुक्र है बीमारी आई, मजबूरी आई, घर बैठेंगे। और याद रखें, कई लोगों का निफाक मजबूरियों के पर्दे में छुप जाता है। शुक्र करें मजबूरियां, तो निफाक छुपा हुआ है, जिस दिन मजबूरी खत्म होती है असल उस दिन खुलता है। ये तो हम खुद थे जो अल्लाह ने हमें मजबूरी में डाल दिया। तो बड़े से बड़ा अमल इंसान को छोटा लगता है, फिर उसमें चाहे इबादात हो, रातों का जागना, दिन का काम, कुछ भी हो, वो हमेशा करते। वजह क्या, कि अल्लाह के एहसानात बहुत हैं उसके ऊपर। वो कहते हैं अल्लाह जो तूने मुझे दिया उसके बदले में तो मैं दे ही नहीं सकी। फिर एक काम अच्छा करते हैं तो दूसरा बुरा, दूसरा अच्छा, तो वो रोता ही रहता है ऐसा बंदा। और सहाबा इकराम बेचैन रहते थे, करके नेकियां रोते थे। एक सहाबी के बारे में आते, सारी जिंदगी रोते, नेमते थी सब था लेकिन बेचैन थे। और मौत के वक्त जिसम जख्मों में चूर चूर है तो मुतमईन है, कभी आपको क्या हुआ? कहा इसलिए कि पहले नेकियां करता था लेकिन डर क्या था कि मौत के वक्त पता नहीं क्या कर रहा होगा। और आज इत्मीनान इस बात का है कि अल्लाह के पास अच्छी मौत जा रहा हूं। तो नेकी करके मुतमईन नहीं होना। आप देखिए नमाज की सलाम फेरते सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम के बाद क्या कहते हैं मुल्फत, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह अकबर एक दफा, फिर 3 दफा आप कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। क्यों भाई, आप फिल्म देख के उठे? इस्तग़फार किस बात की है? इस बात की है कि अल्लाह तेरी इबादत का वो हक नहीं अदा कर सका जो करना था, वैसी नमाज नहीं पढ़ी जो पढ़नी थी। इबादत की कमी, नमाज की कमी, नक्स है ये। और जितनी अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती जाएगी उतना इसका एहसास बढ़ता जाएगा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं बड़ी जालिम हूं अल्लाह, मैं करूं क्या, तू तो पाक है और तू है भी एक। और जितनी अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी ना, अल्लाह की मार्फत के रमूज़ो इसरार खुलते चले जाएंगे। बंदा गैब नहीं जानता, याद रखिए, लेकिन उसको सब पता लगने लगता है। हदीस में आता है इत्तकु फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह की बुरहान से देख लेता है। लोग क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है, वो आज क्या करेंगे, वो कल क्या करने वाले हैं, इस बात के बाद इनका रिएक्शन क्या होगा, वो रिस्पॉन्स क्या करेंगे, सब शीशे में लिखी हुई चीज की तरह दिखता है, क्योंकि अल्लाह राज खोल देता है। जैसे आपके साथ कोई मोहब्बत करते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना दिल की बातें करता है। किसी दोस्त को आज मिले पहली दफा, तो कुछ भी नहीं लिए दिए रहेंगे, 1 साल साथ रह ले, आपके सारा दुख सुख उसको पता, उसका आपको पता है। अल्लाह भी आपसे अपने दुख सुख करता है, अल्लाह का तो कोई दुख सुख नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने राज खोल देता है। और जितना आप अल्लाह का कुर्ब पाएंगे ना, आपको अपने अमाल कमजोर लगेंगे। सूरत मोमिनून की आयत 60 याद है, वल्लज़ीना यूतून मा आतौ वकुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। हजरत आयशा ने यह आयत सुनकर क्या कहा था, अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो चोरियां करते हैं और जिना करते हैं और बदकारियां करते हैं। कहो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, इससे मुराद चोरियां गुनाह करने वाले नहीं है, बल्कि रातों के तहज्जुद गुजार इबादत गुजार है, कि नेकियां करने के बावजूद वो डरते रहते हैं कि पता नहीं उनके रब ने ये कबूल भी किया कि नहीं। तो अल्लाह हमें ये आजजी दे, काबिलियत नहीं पैदा करें, कबूलियत के असबाब पैदा करें। कितने ही आप काबिल हो, अल्लाह मुंह पे मार दे हमारी नेकियां, क्या कर लेंगे। आज काबिलियतों को बढ़ाने का शौक है, ये फिर वो, उसके बाद वो, कबूलियत का उम्मीद या उसकी तमन्ना या तलब कम है। 12वीं अलामत क्या है कि मुसलमानों के लिए ऐसा शख्स नरम खू और काफिलों के लिए तुंदो सख्त होता है। यानी इसको अपने लफ्जों में देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत की अगली अलामत है कि मुसलमानों के लिए दिल में नरमी आती है, और कुफार के लिए उनके रूल्स और उनके तौर तरीकों के खिलाफ इंसान सख्त होता है और जिहाद की तैयारी करता है। यानी जो बंदा अल्लाह के रास्ते से उसको रोकेगा, वो उससे सख्त मामला करेगा। और इस पे सबसे खूबसूरत आयत सूरत माईदा की 54 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ याति बिकौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहू अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाएम। एक तो कहूंगी किसकी तफसीर सुन ले, और जिन्होंने सुनी है उनको पता ही है आप लोगों ने इसमें कितने पॉइंट्स जमा किए थे। लेकिन आप देखें, ये एक चेकलिस्ट है, मोमिन की 4 खूबियों का जिक्र है इस एक आयत में। मोमिनों के लिए नरम खू, खुश मिजाज, रहम दिल, शफकत, मेहरबानी। वो ये नहीं कहते ना मुसलमानों से तो काफिर ही अच्छे हैं, मुसलमानों से प्यार करता, अल्लाह से प्यार करने वाला। फिर काफिरों के लिए सख्त और तुर्शरू। अब इसका यह भी नहीं मतलब कि बदतमीज हो और उनको गालियां दे और मुर्दाबाद के, नहीं, नरम चारा नहीं होते कुफार के लिए, उनके तौर तरीकों को नहीं अपनाते, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन मानेंगे जहां तक अल्लाह के रूल से नहीं टकराएंगे। फिर अल्लाह की राह में जंगो जिदाल के लिए तैयार, यानी हर वो रुकावट दूर कर देंगे जो अल्लाह की तरफ जाने से रोके, और मलामत वाले की मलामत से नहीं परवाह करनी। और मलामत और मुखालफत का फर्क आप में से कोई बताए, मैं नहीं बताऊंगी। जी सदफ, मुखालफत और मलामत का फर्क क्या है, क्योंकि यहाँ लफ्ज मलामत है, मुखालफत नहीं।
दोस्ती के रूप में इस तरह की उसको रोकने की कोशिश करना,
देखिए मुखालफत दुश्मनों की तरफ से होती है, मलामत दोस्तों की तरफ से होती है। मुखालफत के लिए बंदा जहनी तौर पर पहले ही तैयार होता है कि अब इन्होंने फिर देखना हमारे खिलाफ कोई बात शुरू करनी है। मलामत के लिए कोई तैयार नहीं होता। आज हम मुसलमानों का मामला मुखालफत का नहीं है, मलामतों का। अपनों की बातों के डर से हम दीन की तरफ नहीं आते। यकीन करें, नॉन मुस्लिम्स में आप हिजाब के साथ जाएं, आपको इतनी फिक्र नहीं होती, और आप हिजाब के साथ शादी में चले जाएं अपने रिश्तेदारों में तो ज्यादा गम होता है। वो कहेंगे कि कितनी बेवकूफ हो, सेट भी छुप गया, ये हेयर स्टाइल क्यों बनाया था अगर ऊपर दुपट्टा उड़ना था। कभी गैर मुस्लिम आपका एक स्काफ खींचे, पूरी दुनिया के मीडिया पे आ जाता है। और शादियों में लोग हिजाब और स्काफ अपनी भाभियों बहनों के खींचे तो वो कोई कुछ नहीं कहता। तो ये मलामतें ज्यादा बंदे को सुस्त करती हैं। इसकी के बारे में, मोमिन की सिफात के बारे में बहुत प्यारा एक कॉल है जुन्नून मिस्री का। उनसे किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है, तो कहते हैं जो चीज अल्लाह को महबूब हो वही तुम्हारे दिल को भाए, और जो चीज अल्लाह को नापसंद हो इसकी तरफ तुम्हारी तबीयत रागिब ना हो। सोचें जरा इस पे, और तुम महज अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए नेक काम करो, और कोई मोटिव नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। और जो चीज अल्लाह की याद से गाफिल कर देने का जरिया हो, इसका बाइकॉट करना तुम्हारी आदत बन जाए, और अल्लाह की खातिर किसी लानत व मलामत करने वाले की लानत व मलामत की तुमको कोई परवाह ना हो। और मोमिनीन के लिए नरमी तुम्हारा तुर्रा इम्तियाज बन जाए, और कुफार व मुशरिकीन से बरसरे पेकार होने का मामला हो तो तुम फौलाद की सलाबत रखने वाले बन जाओ, और दीन के मामले में इत्तबाए सुन्नत रसूल तुम्हारा शेवा बन जाए। इसको कहते हैं गोल्डन वर्ड्स, या खुद लिखें, इसकी भी जगह छोड़ दें अपने नोट्स में, इसी से देख के नकल करें। करना आपने क्या, एक एक जुमला लिखना, फिर सोचना 3-4 सेकंड, मैं हूं ऐसी, जो अल्लाह को महबूब है वो भी मुझे महबूब है, जो अल्लाह को नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद। देखिए, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढाल दें, जो अल्लाह तुझे पसंद वो मुझे पसंद हो, यही गुब्बे इलाही है। तो आप इसको गौर से लिखेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अगली अलामत देख लें, शरई अहकामात की तबाह भी मोहब्बत की अलामत है, यानी अल्लाह ने जो शरीयत हमको दी है ना उसको मानिए। इसके लिए सूरत आल इमरान आयत 31 में आता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, पूछिए अपने आप से, करती हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या करो, तो मेरी पैरवी करो, किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। हाफिज इब्ने कसीर इसके बारे में लिखते हैं कि ये आयते करीमा हर उस शख्स के बारे में हाकिम अदल की हैसियत रखती है जो अल्लाह की मोहब्बत का खाली दावा करे, मगर मिल्लत मोहम्मदिया से रूगरदान हो और जादा मोहम्मदी से हटकर किसी दूसरी राह को इख्तियार किए हुए हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिला शुबा ऐसा शख्स अपने जुबानी दावे में झूठा और दरोग गो, यानी झूठ बोलने वाला है, और इस वक्त तक वो मोहब्बत के दावे में हक बजानिब नहीं हो सकता, हत्ता कि वो शरीयत मोहम्मदिया और दीन नबी के तमाम अकवालो अफाल और अहवालो कवायफ में इतबार पैरवी ना करे। सारी बात के अंदर खुलासा वही है, ये सब काम करेंगे तो वो होगा। और रियायत आपके ऊपर एक किस्म की तराजू है। फिर इसी तरह इमाम जमाखशरी कहते हैं, जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का जुबानी तो दावा करे और अमली तौर पर रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत करे तो वो झूठा और कज्जाब और दज्जाल है। अल्लाह की किताब खुद इसकी तकजीब कर रही है। और अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो अल्लाह की मोहब्बत का जिक्र करके अपने मुंह मियां मिठू बना हुआ हो और अल्लाह का जिक्र करते हुए तालियां बजाए, कवालियां गाए, नारेबाजी करे और तरबो मस्ती में वजदो हाल का समा बनाए, तो इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि ऐसा शख्स अल्लाह की मार्फत से कोसों दूर है। इसको पता ही नहीं कि अल्लाह की मोहब्बत होती क्या है। जहां तक कवालियां गाते हुए तालियां बजाने, झूमने और हाल आने, गाने बजाने और नारेबाजी और तरबो मस्ती की कैफियत में वजद और हल के आने का मामला है, तो ये इसके नफ्स में खबीस तसव्वुर का नतीजा है। ये एक तसव्वुराती इश्को प्रेम की कैफियत है। अल्लाह ताला ने इनकी जाहिलाना फासिकाना हरकत की निशानदेही कर दी। इसके बाद तालियां बजाने और नाचने गाने, कैफो सरमस्ती, नारेबाजी, शोरों शराब और तसव्वुर इश्क में झूमने और हाल हाल समझते हैं ना, वो जो कहते हैं हाल पड़ गया, वो उसकी तरफ है, और हाल आने की बारी आती है, तो कभी तो इस बात का भी मुशाहिदा किया गया कि गंदगी इस शख्स के अपने ही कपड़ों में गिर जाती है और वजद और हाल की कैफियत में निकल कर लथपथ हो जाती है, यानी अपनी इस मस्ती में खुद इसके जिस्म की गंदगी इसके जिस्म से निकलती है, और जाहिल अवाम हमाकत का पुतला बने इसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं। इनके हाल और वजद की कैफियत को देख कर अवाम पर रिक्कत और वजद का समा बन जाता है, और आंसू बहने की वजह से इनके कपड़े भीग जाते हैं या नम हो जाते हैं। कितना गहरा कॉल है ये इमाम जमाख्शरी का। और आप सोचेंगे ये सब कुछ आज के दौर में, हालांकि इमाम जमाख्शरी तो बहुत पुराने दौर के मुफस्सिर थे, तो क्या पता चला कि हर दौर में लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत के जुबानी दावे और इसी तरह की तालियां वालियां पीट कर करना किया। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन उस वक्त उनके हाल हुलिए बाज दफा देखें तो मर्दों की औरतों की मुशाबहत हो रही होती है। तो बहरहाल आप खुद इस पे गौर कर लें, इसमें कितनी चीजें हैं कि जो आज के दौर में लोगों में आपको आम दिखती हैं। 14वीं अलामत के कि अदावत और मोहब्बत का मियार अल्लाह ही के लिए हो जाता है। इसको कहते हैं अल हुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला। इस मौजू पे तो आप पूरी बुक पढ़ लें, स्टॉल पे होगी तफहीम सुन्ना सीरीज की। अल विला वल बरा, अकीदे का हिस्सा याद रखिए, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का पूरा होना और इसका इजहार अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से बुग़्ज़ व अदावत का मामला रवा रखना, यानी ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करे जो अल्लाह से दुश्मनी करता है, और ना इसका अपोजिट। इमाम नावी कहते हैं, महज अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना गोया कि अल्लाह से मोहब्बत करना। यहाँ आप सिर्फ अपने आप से लिखिए, जब मैं किसी को ये कहती हूँ कि इन्नी युहिब्बु की फिल्ला, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करती हूँ, या आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, तो क्या वाकई मैं उसमें अल्लाह को सामने रखती हूँ? और किसी को गलत काम करता देखे, देखे हजरत नूह ने अपने सगे बेटे को छोड़ दिया, ये था अलबुग़्ज़ु फिल्लाह। और बिलाल जो हबशी थे उनको सीने से लगा लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, क्यों? क्योंकि हुब्बु का फिल्ला। तो अल्लाह से जब मोहब्बत होती है तो फर्क नहीं होता। एक पिक्चर किसी ने भेजी, एक काला बच्चा है बिल्कुल ब्लैक और एक गोरा, और दोनों ने थोड़े से कपड़े पहनने में और हाथ में हाथ रखे हुए और मुस्कुरा रहे हैं, तो किसी ने उस पर कमेंट दिया हुआ था कि मोहब्बत स्किन कलर से नहीं है, यानी गोरे को काले से हो इससे कोई फर्क नहीं होता, मोहब्बत का मजहर दे ला जिससे दिल मिल जाए। तो आप जरा सोचिए, मैं आपको एक इस पर कड़ा मैार दे दूं, हम पाकिस्तानी तो इसमें बहुत ही बिगड़े हुए हैं। ये कल्लों की मस्जिद है, ये सोमालियों की मस्जिद है, ये बंगाली हैं, ये फलां हैं, नाक चढ़ा चढ़ा के हम बात करते हैं। चलिए जरा अपने लिए लेते हैं, कोई अफ्रीकी सिस्टर अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़कर हमें पेश करे तो खाते हैं। ये याद रखिए, आज उम्मतों में टूटे पड़े हैं हम। वो कहते हैं ना, कहीं कितनी तुम्हारी जातें हैं, कितने तुम्हारे रंग हैं। जब मुसलमान एक जगह नहीं मिल सकते तो बताइए गैर मुसलमानों को किधर बुलाएंगे? कल्चरों की मस्जिदें, यहाँ तो फिरके बहुत है ना। आप अमेरिका में जाएं तो वहां अल्हम्दुलिल्लाह ये फिरकावारियत नहीं है, ऐसी इतनी कबाहत नहीं है जो यूरोप में मैंने देखी है पिछले सालों में। लेकिन वहां कल्चरली बहुत सारी मस्जिदें, ये सोमालीज की हैं, ये बंगालीज की हैं, ये फलांस की है, फलां की। एक कल्चर मिलने के नाते इंसान को वहां इजी फील करना नो प्रॉब्लम, लेकिन हकीर नहीं आप समझ सके। वहां हम नहीं जाते, वहां काले बहुत आते हैं। अब तो ये उस मस्जिद में सब सोमाली आने लगे, हमसे सोमाली लाख दर्जा अच्छे हैं, 5 वक्त नमाज तो पढ़ते हैं। हम मुसलमान तो मस्जिदों में, हमारे मैं कहती हूँ हर मस्जिद देखिएगा एंड पे या अफ्रीकियों के हाथों में चली जाएगी या सोमाली, ये लिख ले मेरी बात दिल की। इस शहर की 70 मस्जिदें या 60 है ना, आज से 10 15 20 साल बाद ये सारी मस्जिदें या ब्लैक मुस्लिम्स के पास होंगी या सोमालीस के पास होंगी, क्योंकि खाली घर कौन रखता है। हमने तो जाना है जुम्मे के जुम्मे, या हमने तब जाना है जब कोई बुरा ख्वाब आएगा, या रमजान में जाना है। तो मस्जिदों वालों को चंदे भी चाहिए, उनको मस्जिदें चलानी भी हैं, उनको काम भी चाहिए, खाली क्यों रखे जो उनकी काम करता है। मैंने ऐसी कई मिसालें अमेरिका में अभी तक देख ली हैं कि वहां आप दूसरे ब्रदर हैं तो वो तो इतने अच्छे खूबसूरत लोग हैं, उनमें जो दीन की मोहब्बत है, हम तो बिगड़े हुए लोग हैं। अल्लाह ताला हमारी हिदायत का सबब बना दे। बहरहाल 15 सेकंड लास्ट है ये, सालेह बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह वाला नेक लोगों से प्यार करता है। शाह किरमानी कहते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक, अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक उस्तवार होने की दलील। इब्ने हजर कहते हैं, अहले मिल्लत इस्लाम से मोहब्बत करना गोया के अल्लाह ताला और इसके रसूल से मोहब्बत करना। यानी अल्लाह से मोहब्बत कैसे करेंगे? अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे। अहले बैत से मोहब्बत करना रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। जैसे याला बिन मुर्रा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, जिसने हुसैन से मोहब्बत की इसने गोया अल्लाह से मोहब्बत की, और हुसैन मेरी औलाद में से एक है। यानी फातिमा के बेटे की तरफ इशारा है। उम्मे सलमा कहती है कि मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि अल्लाह के नबी को ये कहते हुए सुना, आपने फरमाया, जिस शख्स ने अली से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ व अदावत का मामला रवा रखा इसने मुझसे बुग़्ज़ और अदावत की, और जिसने मुझसे अदावत की इसने अल्लाह से बुग़्ज़ और अदावत का मामला किया। सहाबा की भी आपस में मोहब्बत का जिक्र है। हजरत आयशा कहती हैं, किसी शख्स को इस बात का हक नहीं पहुंचता कि वो उसामा को बुरा भला कहे या इनसे बुग़्ज़ और अदावत का रवैया अपनाए, जबकि मैं रसूलुल्लाह को इनके बारे में ये कहते हुए सुन चुकी हूँ कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार रखना चाहे, इसको चाहिए कि वो उसामा से मोहब्बत करे रदी अल्लाह अन्हो। जानते हैं ना, जैद के बेटे थे और काले थे। कितने लोगों को पता है कि उसामा काले थे? और अल्लाह के नबी एक टांग पे हुसैन को बिठाते जो गोरे चिट्टे थे, हाशमी खानदान से थे, और दूसरी तरफ उसामा को बिठाते और आप कहते ये मेरी एक आंख है तो ये मेरी दूसरी आंख है। अल्लाह के नबी उनके मुंह चूमते, उनका प्यार करते, हम काला बच्चा देख के कहते हैं नहीं हम पकड़ लेंगे तो हमारे हाथ काले हो जाएंगे। तो ये रंग नस्ल का फर्क नहीं करना। और आखिरी अलामत जो यहाँ हम देखेंगे वो क्या है, अल्लाह से मोहब्बत करने की अलामत, दुनियावी जिंदगी से बेरग़बती और जुहद पैदा हो जाता है। मोहम्मद बिन मुबारक कहते हैं, क्या इस शख्स को अल्लाह की मोहब्बत के दावे का हक हासिल है, जबकि इसका हाल ये है कि वो सरीद को अपनी तीनों उंगलियों से लपेट कर खाने में जुटा हुआ है। सरीद क्या है? गोश्त का सालन। और अल्लाह के नबी को इतना पसंद था, आपने कहा कि आयशा की मिसाल दूसरी औरतों पर ऐसे जैसे सरीद के खाने की मिसाल दूसरों पर। मुराद इधर क्या, सरीद से हर वक्त खाने का लालच, खाना सुबह क्या पकेगा, दोपहर को क्या होगा, रात को क्या होगा। तो अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत से बुग़्ज़ और अदावत पैदा करती है। फिर इंसान बुलंद मकासद तक चलता है, उसको हर वक्त खाने पीने की फिक्र नहीं रहती। तो अब देखिए कि ये अब 16 नुक्ते मेरे और आपके लिए सोचने और समझने के हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये टेस्ट करवाने के बाद अब हम अपना इलाज भी करवाने के काबिल हों।